بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے دہشت گردی سے متعلق امریکہ کا دوہرا معیار اور دہشت گردی سے متعلق امریکی وزارت خارجہ کی سالانہ رپورٹ۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، تو ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، پوری دنیا میں دہشت گردی کو پروان چڑھانے والے، دہشت گردی کو بڑھاوا دینے والے اور دہشت گرد گروہوں کی ہر طرح سے مالی، فوجی اور لاجسٹک حمایت کرنے والے امریکہ نے اور اس کی وزارت خارجہ نے ایک بار پھر سالانہ رپورٹ جاری کی ہے جو دہشت گردی سے متعلق ہے، اور اس نے اپنی من پسند کی اسی رپورٹ میں ان ملکوں پر دہشت گردی کی حمایت کرنے کا الزام لگایا ہے جو کہیں نہ کہیں یا کسی نہ کسی اعتبار سے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہر میدان میں بات کرتے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ جو امریکہ کی پالیسیوں کو ماننے کے لیے کسی بھی قیمت پر تیار نہیں ہوتے۔ من جملہ اسلامی جمہوریہ ایران بھی انہی ملکوں میں شامل ہے جس پر امریکہ نے الزام لگایا ہے کہ ایران دہشت گردوں کی یا دہشت گردی کی حمایت کرتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ نے ان لوگوں کو دہشت گرد قرار دیا ہے جو اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں۔ فلسطینی عوام کی اگر ایران حمایت کرتا ہے تو امریکہ نے کہا کہ چونکہ ایران فلسطینی گروہوں اور فلسطینی قوم کی حمایت کرتا ہے، اس لیے وہ دہشت گردی کی حمایت کر رہا ہے۔ حزب اللہ اپنی سرزمین کی حفاظت اور پاسداری کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہے اور ایران حزب اللہ کے موقف کی حمایت کرتا ہے، تو امریکہ نے الزام لگایا ہے کہ ایران حزب اللہ کی حمایت کرتا ہے۔ گویا فلسطینی بھی دہشت گرد ہیں اور حزب اللہ بھی ان کی نظر میں دہشت گرد۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ اور ہنسنے اور ہنسانے والی بات یہ کہ امریکہ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ چونکہ ایران عراق میں عوامی رضاکار فورس کی حمایت کر رہا ہے داعش دہشت گرد گروہ کے مقابلے میں، تو لہٰذا وہ دہشت گردی کی حمایت کر رہا ہے۔ یعنی عراقی عوام جو اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں داعش کے مقابلے میں، جس نے آج پوری دنیا کو دہشت گردی کے خطرے سے دوچار کر رکھا ہے، اگر ایران عراقی عوام کی حمایت کر رہا ہے تو امریکہ کی نظر میں ایران دہشت گردی کی حمایت کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
امریکی وزارت خارجہ نے دہشت گردی، منشیات اور انسانی حقوق جیسے معاملات پر سالانہ رپورٹ جاری کی جس میں اسلامی جمہوریہ ایران پر دہشت گردی کی حمایت کا الزام لگایا گیا۔ امریکی وزارت خارجہ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران حزب اللہ لبنان، عراقی شیعہ گروہوں، فلسطینی تنظیموں اور بشار اسد کی حمایت کر رہا ہے، اس طرح یہ ملک دہشت گردی اور دہشت گردوں کی مدد کر رہا ہے۔ یہ حقیقت ساری دنیا جانتی ہے کہ عراق میں دنیا کے 90 سے زائد ملکوں کے ہزاروں دہشت گرد داعش تنظیم میں شامل ہو کر آئے دن بھیانک جرائم انجام دے رہے ہیں اور ایسا وحشی پن کر رہے ہیں کہ ان کے بارے میں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے عراق کی حکومت اور عوام کی مدد کی، جس کے نتیجے میں دہشت گردوں کے قبضے کا دائرہ بڑھنے کا سلسلہ رک گیا اور رفتہ رفتہ دہشت گردوں کے قبضے والے علاقے آزاد کرائے جا رہے ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ اس مدد کو دہشت گردی کی مدد کہتی ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ امریکی حکومت اسی داعش کے خلاف بمباری کرنے اور دہشت گردوں کو مارنے کی بھی دعوے دار ہے۔ امریکی حکومت کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ عراقی حکومت کی مدد کر رہی ہے، لیکن جب اسلامی جمہوریہ ایران عراق کے عوام اور حکومت کی مدد کرتا ہے تو اسے دہشت گردی کی حمایت قرار دیا جاتا ہے۔ امریکہ نے عراق میں داعش کی مدد بھی کی ہے اور اس کے لیے امریکی طیاروں نے اسلحے کی کھیپ گرائی ہے اور اسے غلطی کا نام دیا ہے، جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ داعش کے سلسلے میں امریکہ کی اسٹریٹجی بہت مشکوک ہے۔ یہی صورتحال شام میں بھی ہے۔ شام میں ایران نے بشار اسد کی قانونی حکومت اور اس ملک کے عوام کی مدد کی ہے اور آئندہ بھی یہ مدد جاری رکھنے کا ایران کے حکام بار بار اعلان کر رہے ہیں۔ شام کے ساتھ ایران کا سیکیورٹی معاہدہ بھی ہوا ہے اور اس میدان میں عراق کے ساتھ بھی تعاون کو فروغ دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ امریکہ اسے بھی دہشت گردی کی حمایت قرار دیتا ہے، جبکہ امریکہ کی جانب سے شام میں لڑنے والے دہشت گردوں کی $1 ارب کی مدد کی گئی ہے اور امریکی وزارت جنگ شامی دہشت گردوں کو $250 سے $400 تک تنخواہیں بھی دے رہی ہے، جس کا اعلان خود امریکی وزارت جنگ نے بھی کیا ہے۔ ان حقائق کو دیکھتے ہوئے یہی کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ کی نظر میں دہشت گردی کی تعریف ساری دنیا سے مختلف ہے۔ امریکہ پوری قوم اور حکومت کو دہشت گرد قرار دیتا ہے، جبکہ ان کے خلاف جرائم انجام دینے والے گروہوں کی مدد کرتا ہے۔ حزب اللہ اور فلسطینی تنظیموں کے سلسلے میں بھی یہی بنیادی فرق ہے۔ اپنے وطن اور سرزمین کا دفاع کرنے والی ان تنظیموں کو امریکہ دہشت گرد قرار دیتا ہے اور ان کی سرزمین پر قبضہ جمائے بیٹھی صہیونی حکومت کی بڑھ چڑھ کر مدد کر رہا ہے۔ بنابراین ضرورت اس بات کی ہے کہ امریکہ دہشت گردی کے بارے میں اپنی سوچ اور نظریے کی اصلاح کرے اور وہ نظریہ اختیار کرے جو ساری دنیا کی نظر میں قابل قبول ہے۔
جی ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھیوں کی ترتیب کردہ رپورٹ ملاحظہ فرمائی۔ اب چلتے ہیں سیدھے لندن اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں سینئر طرز نگار جناب سلیم احمد قاضی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟
اللہ کا شکر ہے۔ قاضی صاحب، میں اس وقت دور حاضر کا ایک بہت بڑا مذاق یا جوک آپ کو سنا رہا ہوں، اگر اس سے بڑا آپ کے پاس کوئی جوک ہو تو ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے گا۔ وہ جوک یہ ہے، مذاق یہ ہے کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ فلاں ملک مثلا ایران جو ہے وہ دہشت گردی کی حمایت کر رہا ہے، یہ بات امریکہ کہہ رہا ہے۔ میری نظر میں یہ اس دور کا سب سے بڑا مذاق ہے، اگر اس سے بڑا آپ کے پاس کوئی جوک ہو تو آپ سنائیے۔
اتفاق دیکھیے کہ واقعی بڑی حیرت ہے کہ اس سے بڑا ہونا تو نہیں چاہیے، یہ بہت بڑا مذاق ہے، لیکن سچی بات پوچھیں تو اس سے بڑا مذاق جو ہے وہ میرے سامنے پڑا ہے اس رپورٹ کی شکل میں جو ابھی آئی ہے، اقوام متحدہ کی رپورٹ جو ہے غزہ کے اوپر جو ہے فرد جرم کس کے اوپر عائد ہو رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں آپ سے بازی لے گیا ہوں، وہ اس سے بڑا لطیفہ مجھے دکھائی دیتی ہے کہ جس میں جو ہے ایگریسر اور وکٹم کے درمیان کوئی تمیز نہیں ہے اور جو ہے وہ ایک ایسی قانونی زبان استعمال کی جا رہی۔ جب بھی ایسا معاملہ آیا ہے، وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ ڈیفینیشن کا حق کس کے پاس ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو چاہے آپ کی وہ کہتے ہیں نا چشمے کرشمہ ساز کرے، کہ آپ چاہیں تو اس کو باغی کہہ دیں، کل چاہیں تو اسے دہشت گرد کہہ دیں، اور جب آپ کر رہے ہوں ویسی ہی کسی ریاست کی، ویسی ہی کسی ریاست کی چھوڑیں، ویسے ہی گروہوں کو آپ نرچر کریں، ان کو غلطی سے کئی دفعہ اسلحہ پھینک دیں۔ ایک دفعہ نہیں، ایک طرف آپ کا دعویٰ ہے کہ ہمارے جو ہیں ٹیکنالوجی وہ اتنی پریسائز ہے کہ وہ جو ہے انچ اور فٹ کا بھی مارجن نہیں چھوڑتی، اس کے بعد آپ ایک نہیں دو نہیں 7-8 مرتبہ بے شمار اسلحہ گراتے ہیں اور ہر دفعہ کہتے ہیں کہ اصل میں اس کا مقصد کسی اور کو پہنچانا تھا، ہوا یہ غلطی سے کہ یہ جو ہے داعش کے ہتھے چڑھ گیا۔ تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، بلکہ سمجھ آ بھی رہی ہے، سمجھ یہ آ رہی ہے کہ نہیں، ایک سوچا سمجھا وہ منصوبہ ہے جس کے تحت آپ ان گروہوں کو بڑھاوا دیتے ہیں، اور جب وہ آپ کے لحاظ سے مطلب ایک نیوسنس کریٹ کی جاتی ہے، ایک نیوسنس کریٹ کی جاتی ہے، اور پھر اس کو اس کے حوالے سے باقی ملکوں کا جیسے ایران پہ الزام لگا دیا، کسی اور پہ، کہ اب جو آپ کر رہے ہیں، بھائی ہم تو دفاع کر رہے ہیں، کل تک جو یہی لوگ جو مظلوم تھے ان کے ساتھ کھڑا ہو۔ اب غزہ میں کیا ہوا، مطلب اس کے اگر آپ فگرز پڑھیں تو اتنی شرمندگی ہوتی ہے پڑھتے ہوئے، کہ یہ اقوام متحدہ کی انسانی کمیشن کی رپورٹ ہے جس میں وہ مور اور لیس جو ہے حماس اور اسرائیلی فوج کو برابر کا جو ہے جنگی جرائم کا مجرم قرار دے رہے ہیں۔ نہ تو ان کو تعداد سے کوئی غرض نظر آتی ہے کہ ایک طرف 2251 لوگ مارے جاتے ہیں جن میں سے 1462 سویلین ہیں اور ان 1462 میں سے 550 بچے ہیں، دوسری طرف آپ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اسرائیل کا جس کے ٹوٹل جو ہیں وہ 67 فوجی مرتے ہیں اور 6 سویلین جو کہ 9% سے زیادہ نہیں، جبکہ غزہ میں مرنے والے سیویلین کی تعداد جو ہے وہ 55% ہے ٹوٹل کیجولٹیز کا۔ اور اس میں کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں لگتا ہے کہ دونوں طرف سے جو ہیں کچھ مسائل آئے ہیں اور دونوں نے جو عالمی قوانین ہیں جنگ کے اس کی پاسداری نہیں کی۔ تو کمنگ بیک ٹو جو آپ کا سوال ہے کہ اب لیکن ایک بڑا دلچسپ اس کو میں سمجھتا ہوں، ہم اس مرحلے پہ کھڑے ہیں جہاں پہ جو ہے جان کیری صاحب کی سٹیٹمنٹ پرسوں کی دیکھ لیں، انہوں نے کہا کہ جو ہے ایران کے ساتھ بات آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن دیکھیں کہ ود ان دیٹ کانگریس میں ریپبلکن نے اس پہ اچھا خاصا شور مچایا، فرانس کو بھی سوجی ہے کہ یہ معاہدہ ہونے نہیں جا رہا۔ تو وہ لگتا یہ ہے کہ جب ایک لیول کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جیسے فٹز جرال صاحب نے کہا کہ یہ معاہدہ ہونے میں چند دن باقی ہیں اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو یہ آنکھ نہیں، ایک آنکھ نہیں بھا رہا، امریکہ کے اندر ایک آواز نہیں ہے، اس کے پریزیڈنٹ اوباما پہ اچھا خاصا دباؤ بڑھ رہا ہے، اور ابھی جو تہران مجلس میں جو ہوا وہاں پہ جو بل پیش ہوا اور جس طرح جس اکثریت سے پاس ہوا کہ وی آر بہائنڈ دا ڈیل، اب یہ سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ جو ہے اس کو کیسے سبوٹیج کیا جائے۔ تو اس میں جو ہے ایران وہ پرانا ایکسس آف ایول اور وہ برائیاں جو ہیں، ہاں آپ کو یاد ہوگا بچپن میں وہ آپ کا لطیفہ وہی ہے کہ ہاں ابھی تو نہیں کیا تھا، وہ ایران نے شاید 50 سال پہلے کوئی بات کی ہوگی، تو وہ بھی جا کے ذرا اس کا معائنہ بھی کرتے ہیں۔ تو وہی ہے کہ امریکہ جو ہے اتنی زیادہ بڑی طاقت ہے اور اس کے ہاں لابنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے جہاں سے ایسے میسیجز آ رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ میسیجز آنے کی اس وقت اس بڑی تعداد میں اس بہتات کے ساتھ جو آوازیں آ رہی ہیں، اصل میں وہ انگزائٹی جو ہے اتنی بڑھ چکی ہے کچھ حلقوں میں کہ کہیں یہ ڈیل ہو نہ جائے۔
جی قاضی صاحب میں پھر آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں، میں آپ کی خدمت میں پھر آ جاؤں گا۔ اس وقت چلتے ہیں اسلام آباد جہاں پر موجود ہیں ایک اور سینئر صحافی و تذکرہ نگار جناب علی رضا علوی صاحب۔ السلام علیکم جناب علی رضا علوی صاحب۔ امریکہ بہادر نے رپورٹ جاری کی ہے سالانہ، اور اس میں امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران جیسے ملک کا نام لے کر کہ وہ دہشت گردی کی حمایت کرتا ہے، آپ کیا کہیں گے امریکہ کی سالانہ رپورٹ پر؟
جی امریکہ کی ایک رپورٹ جو ہے وہی جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ وہ ماضی کی تلخیوں سے شاید ابھی آگے نہیں بڑھ سکا، کافی چیزیں حالانکہ آگے ہو چکی ہیں، ویانا کے مذاکرات، ابھی حال میں کچھ جو نائب وزراء خارجہ کے جو مذاکرات ہو رہے تھے، اور صورتحال کافی بہتری کی طرف جا رہی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایسے وقت میں امریکہ اس طرح کے بیان کو جاری کرنے کا مقصد کیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ امریکی اوباما کو ایک طرف تو یقیناً ایران کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے یہودی لابی کی طرف سے بھی دباؤ ہے، انٹرنل بھی دباؤ ہے، اور وہ ایک فطری دباؤ اس لیے بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ جب دو ممالک پہلے اتنے زیادہ فاصلے پہ تھے، اب اگر ان میں کسی طرح کی کوئی قربت بڑھ رہی ہے اور ایٹمی ٹیکنالوجی کے حوالے سے کچھ برف پگھل رہی ہے، تو وہ ایک میرا خیال ہے کہ وہ ایک فطری رد عمل ہو بھی سکتا ہے۔ لیکن عین اس موقع پہ ایک اس طرح کی رپورٹ جاری کرنا، میں نے اس رپورٹ کو بڑا تفصیل سے پڑھا ہے، اور اس نے بہت ساری اور جہاں باتیں کیں کہ اتنے ہزار جو ہیں وہ خودکش حملے ہوئے، دہشت گرد اٹیکس ہوئے، اتنے لاکھوں شہری مارے گئے، اور اس میں ایران جو ہے یہ سپورٹ کر رہا ہے حزب اللہ کو یا باقی گروپوں کو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں تو امریکہ صاحب بہادر کی اپنی ہی بڑی دوغلی پالیسی ہے کہ ایک طرف تو وہ بشار الاسد کی حکومت کو گرانے کے درپے ہے، اور اگر اس کی حکومت کو بفرض محال ایران کا جو نیچرل اور آفیشیل سٹینس جو بھی ہو، ایک انالسٹ کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ایران اس میں اگر ایک حکومت کو بچانے کے لیے سپورٹ بھی کر رہا ہو تو اس میں کیا دہشت گردی ہے؟ دہشت گردی تو پھر یہ ہے کہ آپ وہاں القاعدہ کو، آپ وہاں داعش کو، آپ وہاں آئی ایس آئی ایس کو، آپ وہاں کے ایسے تخریب کار اور دہشت گرد گروپوں کی سرپرستی کر رہے ہیں جو ایک حکومت کو ڈیسٹیبلائز کر رہی ہے۔ تو یہاں اخلاقیات کہاں ہیں، یہاں انسانیات کہاں ہیں؟ اقوام متحدہ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی، تو میں حیرت کی بات یہ ہے کہ جب ایک ملک یمن پر حملہ کرتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ خود مختاری کہاں ہے کہ آپ وہاں بجائے اس کے کہ ایک جارح کو جارح قرار دینے کی بجائے آپ اس کے لیے جسٹیفیکیشن قرار دیتے ہیں، اور وہاں اس ملک کے اندر ایک ایسی تحریک کو जो आज़ादी के लिए या अपने राइट्स के लिए जो जिद्दोजहद कर रही है उसको आप बागी करार दे के उसको मारना कुचलना और हमले करना और जो भी है उस पर काम शुरू कर देते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि इंसानियत कहाँ है, अदल व इंसाफ कहाँ है और आपकी बुनियाद जो है वो कहाँ है? आपका तो सूरत हाल ये है कि आप तो एक झूठ का सहारा लेके इराक पे पिल पड़े थे। सद्दाम बिलाशुबा एक डिक्टेटर था और वो जालिम व जाबिर व फासिक हुक्मरान था, लेकिन आपकी जो जस्टिफिकेशन जो बुनियाद थी कीमियाई हथियार वो आज कहाँ हैं? इतने झूठ पे झूठ बोलने के बाद मुझे समझ नहीं आती कि अमेरिका के पास क्या जस्टिफिकेशन है दुनिया के ऊपर राज करने की और ख़ुद को सुपर पावर कहलाने की और लोगों को और दुनिया को एक सूरत हाल के आगे लेके जाने की। अगर ईरान मजलूमों के साथ हिमायत में है, अगर ईरान मुस्तज़फीन के साथ हिमायत में है, अगर ईरान कुचले हुए लोगों की हमदर्दी की बात करता है, उनकी आवाज़ उठाता है, तो अगर इसको आप दहशतगर्दी करार दे देंगे तो फिर अमेरिका साहब बहादुर आप बताइए कि जो आप कर रहे हैं पूरी दुनिया में, आपने जो कुछ इराक में किया, आपने जो कुछ अफगानिस्तान में किया, आप जो यमन पे खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, आपने इसराइल की जारहियत के ऊपर जो लबनान पे खामोशी इख्तियार की, आपके किरदार को क्या कहा जाए?
बहुत शुक्रिया आपका, मैं फिर हाजिर हूँगा आपकी खिदमत में। स्टूडियो मौजूद रहेगा, चलते हैं दिल्ली स्टूडियो जहाँ पर मौजूद हैं सीनियर तर्ज निगार प्रोफेसर मोहम्मद अरशद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। मोहम्मद अरशद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अमेरिका की जो सालाना रिपोर्ट आई है दहशतगर्दी के ताल्लुक से, उसमें कहा गया कि ईरान गज़ा में फिलिस्तीनी ग्रोहों की हमायत कर रहा है। गज़ा में फिलिस्तीनी आवाम या फिलिस्तीनी ग्रोहों की हमायत करना क्या दहशतगर्दी है? वो फिलिस्तीनी आवाम, वो फिलिस्तीनी ग्रोह जो सहयोनी हुकूमत के जुल्म का शिकार हैं, उनकी हमायत करना क्या ये दहशतगर्दी की हमायत करना है?
देखिए, ये तो पूरा जो है एक ऐसा स्टंट है या एक ऐसे मौके पे जबकि ईरान की एक डील होने जा रही थी उस वक्त उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं ताकि सब पूरा एक प्रोग्राम जो था उसको सबोटेज किया जाए, और उसके लिए उन्होंने गज़ा को और इराक में और दूसरी जगहों पे ईरान या हिजबुल्ला को जो ईरान का सपोर्ट है या बशार अल असद की हुकूमत का जो ईरान का टैक्टिकल सपोर्ट है उसको जो है इन लोगों ने एक असलहे के तौर पे इस्तेमाल किया है। और जाहिर सी बात है कि हमें गज़ा में पता है फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो अमेरिका की सरपरस्ती में हो रहा, वो स्टेट टेररिज्म है जो कि इसराइल के ज़रिए हो रहा है, मगर ये कि उसके स्टेट टेररिज्म को जिसका कि जो है अमेरिका को जिसको अमेरिका का जिसको पूरा सपोर्ट हासिल है उसको कोई जो है इस वक्त जो है दहशतगर्दी नहीं कह रहा है, हालांकि जो है वो असल दहशतगर्दी है। अगर देखा जाए तो दहशतगर्दी इस दुनिया में अगर पनपी है तो वो अमेरिका, दूसरी जंग अजीम में न्यूक्लियर पावर की ये बात करते हैं कि हम ईरान जो है न्यूक्लियर पावर जो है हासिल करना चाह रहा है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाह रहा है, प्लस जो है वो एटम बम बनाना चाह रहा है, मगर ये देखा जाए कि किसने सबसे पहले या अभी तक एटम बम किसने इस्तेमाल किया, वो अमेरिका है। तो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द तो खुद अमेरिका है। अगर जो है गज़ा के अवाम फिलिस्तीनी जो है अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं, कुछ जो है जद्दोजहद कर रहे हैं, तो उसको दहशतगर्दी कहना ये दुनिया का सबसे भोंडा मजाक हो सकता है। असल दहशतगर्दी इसराइल की है जिसको कि अमेरिका का सपोर्ट हासिल है और जो अमेरिका की सरपरस्ती में फिलिस्तीनियों को कुचल रहा है, दबा रहा है, उनके हकूक को मार रहा है, और जिसने फिलिस्तीनियों में बगैर किसी इस्तिस्ना के औरतों, बच्चों, बूढ़ों सबको जो है कत्ल किया है, उनको जो है एक तरह से हलाक किया है, ये सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। और इस दहशतगर्दी के खिलाफ अगर जो है कोई भी मुल्क, दुनिया का कोई भी मुल्क जो है फिलिस्तीनियों को की या गज़ा के लोगों की सपोर्ट करता है तो वो दहशतगर्दी नहीं बल्कि वो तो मजलूमों की हिमायत है जो कि की जानी चाहिए। और इसके लिए मेरा जो
जी नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी रही है मौजूद मेहमानों से, यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं। अलवी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो रिपोर्ट है, ज़ाहिर है आपने फरमाया कि मैंने तफसील से पढ़ी, तो गज़ा के मैसूर फिलिस्तीनियों की हमायत करना, या हिजबुल्ला जो अपनी सरजमीन का दिफा कर रही है, या लबनान के अवाम की हमायत करना, क्या ये दहशतगर्दी की हमायत किसी भी सूरत में बन सकती है? और अगर बन सकती है तो सिर्फ इस उनवान से कि ये दोनों, चाहे वो लबनान के अवाम हो या फिलिस्तीन के, इसराइल के मुकाबले में डटे हुए हैं। तो क्या इसराइल के मुकाबले में जो कुव्वत डटी हो उसकी अगर हमायत की जाए तो वो दहशतगर्दी की हमायत है?
जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, उम्मुल अमराज तो इस वक्त पूरी दुनिया का इज़राइली है, और सारे तकालीफ जो हैं उसी को बचाने के लिए, उसी को मनवाने के लिए और उसी के वजूद को तस्लीम करवाने के लिए हैं। तो अभी जो आप ये देख लें कि जब आपके साथ ईरान के साथ जो डायलाग्स में अभी मामला हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ पूरी दुनिया में किसको है? सहोनी लाबी को है, इज़राइल को है। और वो खुद को, जो कि खुद एक पूरी दुनिया के लिए और पूरी दुनिया के अमन पसंदों के लिए एक ख़तरा है, वो एक अजीम सी मुनाफ़कत का मुजाहरा करते हुए वो कहते हैं मैं ईरान से ख़तरा है। ये अजीब सी बुजदिली और मुनाफकाना ऐसा रवैया है कि एक जालिम, एक ऐसा जारे जो बम बरसाता है, और आगे से अगर फ़लस्तीन का एक बच्चा कोई पत्थर या कंकर फेंकता है तो वो ऐसा मक्कार जालिम है कि वो उस कंकर का जिक्र करता है कि उसे उस फलस्तीनी बच्चे के कंकर से ख़तरा है। वो अपने तोप गोले बारूद से उसको कोई सरोकार नहीं, और वो उसका नहीं बताता। तो इस रिपोर्ट के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं कि यकीनी तौर पर मैं अभी तक, सही बात है कि मैं इसकी टाइमिंग्स पे मुझे बड़ा शदीद एतराज़ है एक तजियाकार के तौर पर, कि एक तरफ तो बातचीत हो रही है, एक तरफ अमेरिका और अमेरिकी सदर अपने दोस्तों को, अपने हवारियों को, अपनी काबीना में, अपनी कांग्रेस में ये बात कहता है कि हम ईरान के साथ कुछ कदम आगे बढ़े हैं, खलीजी ममालिक की कॉन्फ्रेंस बुला के वो ये कहता है कि आपके साथ ताल्लुकात का ये मतलब नहीं है कि हम ईरान को दीवार के साथ लगा दें, और फिर ऐन उस मौके पर अपनी एक स्पोक्स पर्सन के ज़रिए एक ऐसी रिपोर्ट जारी करवाता है, और वो ये कहती है कि ईरान जो है वो दहशतगर्दों के पुश्तपनाही कर रहा है, और इसके ऊपर हमें बड़ा शदीद कंसर्न है, और हमें बड़ा इसके ऊपर एतराज़ है। तो इसकी कोई टाइमिंग से मुझे बिल्कुल कोई समझ नहीं आ रही कि ये टाइमिंग ऐसी इन्होंने क्यों चुनी है। या तो अमरीका की नेक नीयती में बहुत ज़्यादा फतूर है इन मुज़ाकरात के हवाले से, या उसके ऊपर जो एक प्रेशर है वो उस प्रेशर को दूर करने के लिए उसने एक नफ्सियाती और एक सफारती हरबे के तौर पर इस रिपोर्ट को जारी किया है कि देखें जी, हम जो ईरान के ऊपर इससे पहले एलिगेशंस एतराज़ात लगाते रहे हैं, तो हम तो आज भी वही उन्हीं एतराज़ात पे बात कर रहे हैं, और ईरान के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं उसका ये मतलब नहीं है कि हमने ईरान की बहुत सारी बातों को मान लिया है। या इस तरह वो अपनी जान छुड़ाने के लिए अपने मोतरजीन का मुंह बंद करने की भी ये कोशिश हो सकती है। मेरा ख्याल है इस पे हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की या इसको इतना संजीदा लेने की भी मैं इसको ज़रूरत नहीं समझता, क्योंकि अमेरिका इस तरह की हरकतें करता रहता है आलमी सतह पर, सफारतकारी की जो एक ड्रामेबाजी इसको कहें कि उसके तौर पर ये काम करता है
जी।
अब आप बात करें हिजबुल्ला की सपोर्ट, फ़लस्तीनियों की सपोर्ट, मज़लूमों की सपोर्ट, वो मैं ऑलरेडी पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि जब आप एक मासूम बच्चों के ऊपर जुल्म करेंगे, उन पे बम बरसाएंगे, जब आप गज़ा की पट्टी पे ऐसे हमला करेंगे कि वहाँ बच्चों को दूध, बच्चों को खुराक, अद्वियात की रसद और रसाई मुमकिन नहीं रहेगी, और आप उस जुल्म के ऊपर तो खामोशी इख्तियार करते हैं, और एक मुल्क अगर ये कहता है के इंसानियत का तकाजा है, आपका एक मज़हब जो क्रिश्चियनिटी है उस क्रिश्चियनिटी की ही बुनियाद पर इंसाफ कर लें, कि आपका तो कहना है कि अगर एक रुख पे थप्पड़ लगे तो दूसरा रुखसार का दूसरा पहलू आगे कर दो, लेकिन आप इतने जालिम लोग हो कि मासूम बच्चों से दूध भी छीन लेते हो, उनसे अद्वियात भी छीन लेते हो, उनसे खुराक भी छीन लेते हो, और उस पर अफसोस भी नहीं करते हो, जालिम को जालिम भी नहीं कहते हो, और अगर एक मुल्क जालिम को जालिम कहने के दरपे है तो आप उसको दहशत गर्द करार देते हो, ये किस तरह का फेनोमेना है, ये किस तरह का इंसाफ है, ये किस तरह की इंसानियत है, ये किस तरह के असूलो जवाबित हैं कि आप मजलूमों की मदद करने वालों को जालिम या दहशतगर्द करार दें और आपके असले से, आपकी मदद से, देखें जालिम की जुल्म के खिलाफ न बोलना भी तो उसकी मदद है, वो भी तो एक तरह की उसकी मुकम्मल तौर पर आप मदद कर रहे हैं। और अभी अभी कुछ थोड़ा बहुत पहली दफ़ा लगा था कि अमेरिका की तरफ से इसराइल को कुछ मामूली सी आंखें दिखाई गई थीं ये टॉक्स के इश्यूज पे कि जनाब आप मेहरबानी करें थोड़ा सा आप अपना भी मामला देख लें वरना हम आपके जुल्म पे भी बोलेंगे। जब इस तरह के कुछ कंसर्न्स दिए गए तो उसके बाद ये जो बयान है ये बयान खालिस्तन एक डिप्लोमेटिक, एक सफारती, एक ड्रामेबाजी है। अमरीका खुद भी समझता है कि इस बयान की अंदर कुछ नहीं है, इस बयान के जेरे लब कुछ भी नहीं है, इस बयान के पैराए के अंदर जो वो बता रहे हैं उनको खुद महसूस हो रहा है कि उनके खोखले अल्फाज हैं सिवाय इल्जामात के और कुछ नहीं।
जी जी काजी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप देखें कि जो रिपोर्ट है उसमें ये बात कही गई है और बहुत ही हंसने वाली बात है, यानी इंतहाई मजहका खेज बात यह है कि ईरान इराक में अवामी रजाकार फोर्स की हमायत कर रहा है जो दहशतगर्द ग्रोह दाइश के खिलाफ अपने मुल्क का दफा कर रहे हैं। आप देखें कि अमेरिका उसने एक नाम नहाद इतिहाद बना रखा है 40 मुल्कों पर मुश्तमिल दाइश के खिलाफ कि हम दाइश के खिलाफ जो है बमबारी करेंगे, उसके खिलाफ जो है वो ये करेंगे, ऑपरेशन करेंगे वगैरह वगैरह। खुद तो उसने दाइश के खिलाफ जो है इतिहाद बना रखा है, वो कैसा इतिहाद वो एक दूसरी बात है, उस बहस में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर इसी दाइश के मुकाबले में ईरान इराक के अवाम की हमायत कर रहा है, अवामी रजाकार फोर्स की हमायत कर रहा है, तो अब यही रजाकार फोर्स जो है जो दाइश के खिलाफ जंग कर रही है, अगर ईरान उनकी हमायत करता है तो गया दहशतगर्दी की हमायत कर रहा है। ये कौन सा क्राइटेरिया, ये कौन सा मेयार है?
ये कोई मेयार नहीं है और उसके वही है, बात वही है जो मैं कर रहा था कि डेफिनेशन की। अभी इस्लामाबाद से हमारे मेहमान ने इसको बड़ा अच्छा वो एक लिहाज से कंक्लूड किया कि इसकी टाइमिंग देखें और इसके ऊपर जो इसके मंदरजात हैं आप जितना उनमें डिटेल में जाते जाएं आप को सिवाय इस पे हंसी के कुछ और वो नहीं मिलता कि इस पे कितना हंसा जाए या कितना रोया जाए कि ये यानी कि इंटेलेक्चुअल बहरान कहें, इसे सियासी बहरान कहें या आपके आपके दिमाग की इतनी ख़राबी कहें कि आपको ये बात दो और दो चार की तरह समझ नहीं आती कि वही कि जब हम लड़ रहे हैं हम किसी ग्रोह को अगर निशाना बनाते हैं तो वो तो जो है वो अप्रूव्ड है, वो लेजिटिमेट है, वो बैन अल-अक़वामी कवानीन के अंदर है। और यही वो है, आज मैं सुबह बयान पढ़ रहा था टोनी ब्लेयर साहब के, एक जो है उनके फ्लैट मेट ने बड़े दिनों बाद बोले, आज ग्लासगो रेडियो को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुझे पता है ज़ाती तौर पर टोनी ब्लेयर अब कहते हैं कि इराक में इंटरवेंशन जो थी वो गलत थी उस प्रेमिस के ऊपर जो जो है कीमियाई हथियारों के प्रेमिस के ऊपर। तो बात यह है कि जब ये अभी इस वक्त जो हो रहा है अब चूंकि ईरान कर रहा है और अवामी सतह पे उसकी पजीराई है, जो ये लोग नहीं चाहते। अमेरिका का मसला यही है कि वो हमेशा चाहता है कि अपने चंद सिलेक्टेड क्रोनीज के थ्रू हर जगह पर अपने चंद जो हैं चुने हुए लोगों के थ्रू वो ऑपरेट करे, क्योंकि जब भी अवामी सतह पर, क्योंकि ऐसी डिक्टेटर्स को या ऐसी किसी भी ऐसी सिलेक्टेड गवर्नमेंट को अप्रूवल नहीं होती, लोग समझ जाते हैं कि लोगों के दिल किसके साथ धड़कते हैं। अब अगर वो ईरान की तरफ देखते हैं और ईरान उनको सपोर्ट कर रहा है, जिनको लोगों को लगता है, लोगों को खुद महसूस होता है कि ये वो ताकत है या ये वो फॉरेन इंटरवेंशन है जो हमारी भलाई की बातें कर रही है, जो एक्चुअली हमें इस नासूर से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि लोग बेवकूफ़ नहीं है, वो समझते हैं कि अमेरिका और नाम निहाद 40 मुल्कों का जो इत्तेहाद है वो उनकी कारकर्दगी अवाम देख चुकी है। और ऐसा दौर है सोशल मीडिया का और इन्फॉर्मेशन का कि वो कहते हैं कि आप किसी को एक दफ़ा बेवकूफ़ बना सकते हैं, तमाम लोगों को हर वक्त बेवकूफ़ बनाना शायद मुमकिन नहीं है। और यही वो चीज़ है जो उनको डिस्टर्ब कर रही है कि आपकी डेफिनेशन बाबा हम नहीं मान रहे, लोग ये कह रहे हैं कि हमें नज़र ये आ रहा है कि आपके नाम निहाद इत्तेहाद ने तो हमारी जान नहीं छुड़ाई बल्कि उनको जो है एक लिहाज से तकवीयत ही पहुंची है। ये लोग कल जो है 10,000 थे, फिर बाद में सुनने में आया कि 15,000 हो गए, फिर 30,000 हो गए, अब कहते हैं 50,000 हो गए। और दुनिया का अमीर तरीन दहशतगर्द ग्रोह अमीर तरीन दाएश, तो लोग समझ रहे हैं कि कहीं से तो फंडिंग आ रही है। इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ी ताकत इनके पीछे है, और वो उस ताकत का मुकाबला अब अगर अवाम खुद रजाकार खड़े होकर करना चाह रहे हैं कि भाई आप लोगों से नहीं समझ आता, हमें अपने मोहल्लों का पता है, हमें अपने शहरों का पता है, हम विजिलेंटी के तौर पर एक्ट कर सकते हैं, और ये एक एक ताकत है जो हम मजलूमों का साथ देने को तैयार है। लेकिन क्योंकि वहां पे आपको कोई ब्राउनी पॉइंट्स नहीं मिलते, वो जो होता है ना कि पीस फोर्सेस, हमें ही पता है कि पीस कैसे बनाना है, जंग कहाँ ख़त्म करनी है, किसको क्या डेफिनेशन देना है, किसको कब दहशतगर्द का नाम देना है, किसको कब जो है हमने अमन पसंद और उसको जो है एक लिजिटमेट वहाँ का नुमाइंदा करार देना है, ये तारीफें, ये डेफिनेशन हमारे पास हैं क्योंकि इंटरनेशनल इदारे हमारे पास है। और ये यही वो दुख की बात है कि इस रिपोर्ट को अभी देखें कि इतवार के रोज़ इस रिपोर्ट को बड़ी तफसील के साथ आधा घंटा, यानी इस ये रिपोर्ट किसको इतनी प्यारी हुई कि इसकी बाजगश्त आपने और कहीं नहीं मिली, इसराइली काबीना में इतवार के रोज़ वज़ीर आज़म नेतन्याहू इस रिपोर्ट के मंदरजात को सुना सुना कर अपनी पूरी काबीना को तकरीबन 45 मिनट तक बोर करते रहे कि वो ये रिपोर्ट कोट करते रहे कि देखें हम नहीं कहते, ये अमरीका खुद कह रहा है। और मैं वो इस्लामाबाद के दोस्त ने जो कहा, मैं समझता हूँ कि किसी हद तक हमें, मुझे नहीं लगता कि हम ये हमें हमारी खुशफहमी है, लेकिन लगता यही है कि जो करंट रिजीम है ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन और थैंकफुली तहरान एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें कुछ बात होती नज़र आती है। और ये मुझे वो फ्रस्ट्रेशन लगती है, और बिल्कुल कि एक होता है कि एक डाइवर्ट करने के लिए कि हम तहरान के इशारों पर नहीं नाच रहे, ये भी दिखाना होता
जी, बहुत
है
शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।
हम उनके इशारों पे नहीं नाच रहे
जी। अलीवी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बात ये हो रही थी कि कौन दहशतगर्दी की हिमायत करता है। जाहिर है कि अभी आज एक खबर मैंने देखी और नशर भी हुई हमारे टेलीविजन से कि खुद पेंटागन ने एतराफ़ किया है कि शाम में जो शामी आवाम और हुकूमत के खिलाफ मुसल्ला अफराद लड़ रहे हैं, पेंटागन उनको तनख्वाह देता है। दूसरी तरफ जो शामी आवाम या आवामी फ़ोर्स या शाम की फ़ौज के ज़रिए या हाथों दहशतगर्द ज़ख्मी होते हैं, उनका इलाज इसराइली अस्पतालों में होता है। और दहशतगर्दों की इराक़ में अगर आप देखें तो उनके लिए असलहा गिराया जाता है, तो अमरीकी हेलीकॉप्टरों और तैयारों के ज़रिए। तो दहशतगर्दों की हिमायत कौन कर रहा है, फिर वही सवाल आता है। जी अली रज़ा अली साहब, मेरी आवाज़ मेरा ख्याल है आप तक नहीं पहुंच पा रही। बहरहाल ये एक बड़ा सवाल है कि आप देखें कि दहशतगर्द ग्रोह दाइश के खिलाफ इत्तेहाद भी बनाया गया 40 मुल्कों का, नाम नहाद इत्तेहाद बना भी, कहीं जो है वो एक आध हमले भी किए गए, वो भी ऐसे हमले किए गए कि न ये कि दाइश के अफराद मारे गए बल्कि इराकी फ़ौजी ठिकानों पर मारे गए, इराकी शहरों पर मारे गए। और शाम में अगर दाइश के खिलाफ हमले का बहाना बनाया गया तो शाम की बुनियादी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया गया। और पेंटागन की रिपोर्ट में यह है कि हम बशार असद के खिलाफ लड़ने वालों के खिलाफ जो लड़ रहे हैं उनको हम तनख्वाहें दे रहे हैं, तो साफ ये हो जाता है कि दहशतगर्दों की हमायत कौन करता है। जबकि दूसरी तरफ इराक की आला क़यादत, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वो सदर हो, चाहे मकामी इंतज़ामिया जो कुर्दिस्तान की है वहाँ के सरबराह, सब ये कहते हैं कि अगर ईरान ने इराकी आवाम की और इराकी हुकूमत की मदद न की होती तो आज बगदाद पर दाइश का कब्ज़ा हो गया होता। तो अब इराक में ईरान जो है वो दाइश के ख़िलाफ़ है या दहशतगर्दों के साथ है, ये वो सवाल है जो मैं अली रज़ा अलवी साहब से करना चाहूँगा। जी अली रज़ा अलवी साहब,
जनाब गुजारिश ये है कि रोना तो इसी दोहरे मेयार का है कि आप एक तरफ़ तो कहते हैं कि हमने इत्तेहाद बनाया है दाइश को ख़त्म करने के लिए, लेकिन अमली तौर पर एक मुल्क जो दाइश को ख़त्म करने के लिए काम कर रहा है आप उसको उसकी बात भी नहीं मानते और उसकी सच्चाई और उसकी ईमानदारी को मलहूज़े खातिर रखने की बजाय आप और तरह के बयान देते हैं। इस पर तो सवाल ये उठता है कि हज़रत लगता ये है कि आप खुद ही ईमानदार नहीं हैं। दूसरी तरफ आप बात करते हैं सवरेनिटी की, पूरी दुनिया का एक आफाकी असूल है कि कोई मेरे घर के अंदर नहीं घुसेगा, मैं किसी के घर के अंदर नहीं घुसूंगा। ये एक आफाकी असूल है आपका, पूरी वर्ल्ड का, अक्वामे मुत्तहिदा का, सलामती कौंसिल का। लेकिन आप बग़ैर किसी असूल के, इस अपने ही बनाए हुए इस असूल को पामाल करते हुए आप जहाँ दिल करता है आप घुस जाते हैं, जहाँ दिल करता है आप उसको डिस्टेबलाइज करते हैं। अच्छा, फिर आप कहते हैं कि अवाम का एतमाद जिन हुकूमतों को हासिल है उन हुकूमतों के ख़िलाफ़ जो है जो इकदाम करेगा तो वो गलत बात है। अच्छा, बशारुल असद ने आपको अपने अवामी एतमाद जो है वो ज़ाहिर भी कर दिया, उसने आपको बताया आपके हमलों के बाद, और आप जब ये मनसूबा बंदी लेके गए थे और दहशतगर्दों को ये सपोर्ट करते हुए कि हम जी 6 महीने के अंदर अंदर उसकी छुट्टी करवा देंगे, लेकिन जब आप इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए और शाम के अवाम ने आपको नाकों चने चबवा दिए और बशारुल असद के ऊपर एक भरपूर एतमाद का इजहार किया, तो अब आपकी जस्टिफिकेशन कहाँ गई? आपने यहाँ भी ये झूठ बोला कि बशारुल असद जो है वो अवाम की हिमायत खो चुके हैं। अगर वो अवाम की हिमायत खो चुके हैं तो फिर वो इतने मजबूती से अभी तक बैठे हुए कैसे हैं? फिर आप कहते हैं कि यमन में जो हौसी हैं अगर वो अपनी तहरीक के लिए अगर एक गासिब के ख़िलाफ़ अगर वो मुत्तहिद हुए हैं तो आप उन्हें कहते हैं कि वो बागी हैं जी, कि उस हुक्मरान को तो जी वहाँ की लोकल मकामी आबादी की हिमायत हासिल है, लेकिन आप उनके ऊपर जो है चढ़ दौड़ने वाले मुल्क को जारे नहीं कहते। अच्छा जी, फिर आप बहरेन में एक मामूली सी आबादी वाले हुक्मरान ख़ानदान की आप पुष्ट पनाही करते हैं, और वहाँ जो जमहूरियत के लिए, जहाँ इंसानियत के लिए और जहाँ समाज की बेहतरी के लिए जो तहरीकें चल रही हैं आप उन तहरीकों को भी दबाने की कोशिश करते हैं। हजूर, आप किसी एक जगह पे अपने ही किसी एक बनाए हुए असूल पे अमल कर लें। आप या तो ये बताएं कि अगर कोई दूसरे मुल्क के अंदर घुस के हमला करता है, उसके सरहदों की पामाली करता है, तो ये असूल है, ठीक है जी, हम इस असूल को मान लेते हैं। या आप ये असूल बना लें जो आपने पहले वज़ा किया हुआ है कागज़ों में कि कोई किसी की सरहदों की पामाली करेगा तो वो जारे है, तो जब जिन्होंने सरहदों की पामाली की है आप उन्हें जारे भी नहीं कह रहे। फिर आप कहते हैं कि हम ISIS को बिल्कुल उसको कुचल रहे हैं, और हम इतनी ताकतवर मुल्क जो ख़ुद को जदीद तरीन असला से लैस हैं और जो जिनके पास तमाम तर सहूलियात हैं, जिनके पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, जिनके पास भरपूर जासूसी निज़ाम है, जिनकी लेज़र गाइडेड टेक्नोलॉजी इतनी है कि वो टारगेट को उसकी एन जगह पे जाके हिट करता है, तो आपको बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि दाइश कहाँ से चल रही है, उसकी हाई कमान कहाँ से काम कर रही है, वो किस अंदाज़ में चल रही है, उसके काफ़िले किस तरह मुंह के ऊपर डाकुओं के से अंदाज़ में नकाबें ओढ़ के तो वो तहस नहस कर रहे हैं इंसानियत को, और आप वो आपसे बिल्कुल काबू ही नहीं हो रहे, और जो मुल्क उसके ख़िलाफ़ काम कर रहा है आप उसको दहशतगर्द करार दे रहे हैं, तो जान की अगर अमान पाएँ तो फिर तो ये मासूम अगर किसी बच्चे से भी ये सारी बातें सामने रख दी जाएं कि एक जालिम या एक शख्स इधर से ये करता है, इधर से ये कहता है, इधर से ये करता है, तो उसे आप क्या कहेंगे? तो मेरा ख्याल है कि यहाँ किसी PhD की या किसी एटॉमिक फ़िलोसफी की ज़रूरत नहीं है, ना कोई ये रॉकेट साइंस है। वो बच्चा भी बरमला कहेगा कि जो यो इस तरह की बात करता है या तो वो झूठा है या वो खुद दहशतगर्द है या वो खुद जालिम है और वो अपने ही बनाए हुए असूलों के ऊपर भी अमल नहीं कर रहा। तो इसलिए फिर ये जो इसे नतीजतन इस सारी गुफ्तगू के मुख्तलिफ पहलुओं से जो मैंने गुजारिश की है, इसका नतीजा ये है कि इसमें आपकी सिंसियरिटी पे हर्फ उठता है कि आप जिन मकासिद को बुनियाद बना के अपना असला बेचते हैं, आप जिन मकासिद की बुनियाद पर आगे चलने की बात करते हैं, आप जिन मकासिद की बुनियाद पर दहशतगर्दी के खात्मे की आप बात करते हैं, तो आप या तो उसमें संजीदा ही नहीं हैं, आपकी असल प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। जिस तरह एक अमूमी तासुर ये है कि आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो वार बेस्ड टेक्नोलॉजी है, आपकी ख्वाहिश है और आप इसके बग़ैर सर्वाइव ही नहीं कर सकते कि दुनिया में कहीं ना कहीं जंग होती रहे, आपका असला बिकता रहे,
बहुत अगर बहुत अमन हो जाए आपका, बहुत तो बहुत आपकी
टेक्नोलॉजी धड़ाम से ना गिर जाए।
अली रज़ा साहब, नाज़रीन, आपने हमारे तीनों मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई और नतीजा ये निकला कि ये अमेरिका का खुला हुआ दोहरा मेयार है, और जाहिर है कि अगर दहशतगर्दी को कोई बढ़ावा दे रहा है तो वो कोई और नहीं امریکہ اور اس کے چند ایک اتحادی حکومتیں اور ریاستیں ہیں جس میں اسرائیل بھی سر فہرست، یا یوں کہا جائے کہ اسرائیل سر فہرست ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ ایران مظلوموں کی حمایت کر رہا ہے اور مظلوم امریکہ کی نظر میں دہشت گرد ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ ڈیفینیشن اور یہ تعریف امریکہ کو مبارک ہو. ہم مظلوم کو مظلوم کہتے ہیں اور دہشت گرد کو دہشت گرد کرتے ہیں، اور یہی وہ اصول ہے جو اسلامی جمہوریہ ایران کا ہے. جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ہم امریکہ میں سیاہ فاموں پر ہو رہے سفید فام امریکی پولیس اہلکاروں کے ہاتھوں تشدد کے بھی مخالف ہیں، فلسطین میں غزہ کے محاصرے کے بھی مخالف ہیں، یمن پر ہونے والی جارحیت کے بھی مخالف ہیں، پاکستان اور افغانستان میں امریکہ کے ڈرون حملوں کے بھی مخالف ہیں. غرض یہ کہ ہم مظلوموں کے حامی ہیں اور دہشت گرد اور ظالموں کے مخالف ہیں. اب امریکہ اگر اس بہانے ایرانوفوبیا پھیلانا چاہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، پچھلے 30 سال سے امریکہ یہی کرتا آیا، لیکن اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکا. اگلے پرانت تک کے لیے اجازت دیجیے.